कर्मों की गहन गति भी समझना बहुत जरूरी है और ऐसे गुह्य विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता सूर्य जी। हम आपका करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं, सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। आप को योग के प्रति बहुत गहन रुचि है, जिस कारण से आप योग के नित्य प्रयोग करते रहते हैं और इसी योग के नित्य प्रयोगों के आधार पर आप जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान देते हैं। यही कारण है कि कई सारे भाई बहनें प्रतिदिन आपको या तो पत्र लिखते रहते हैं ईमेल के द्वारा या कॉल के द्वारा, आपको अपनी समस्याएं सुनाते हैं और फोन और पत्र के द्वारा ही आपसे समाधान प्राप्त करते हैं। तो भोजन की जो व्यवस्था है, भोजन जो आपको मिलता है, हमारे जो यहाँ तीन कैंपस है, ऊपर में दो कैंपस है ज्ञान सरोवर और मधुबन और नीचे ये शांतिवन जहाँ पधारे हैं, तीनों ही परिसर में भोजन की व्यवस्था आपके देखरेख में ही होती है।
आज का बहुत सुंदर टॉपिक है कर्मों की गुह्य गति। टॉपिक पर चर्चा करने के साथ साथ हम ये चाहेंगे कि आप सभी अपने मन में संकल्प करें, मैं पुण्य आत्मा हूं। ठीक है, माताओं को पसंद है पुण्य आत्मा बनना। आज तक मंदिरों में जाते हुए सभी देवी देवताओं के आगे भक्त लोग ये कहते थे, मैं पापी हूं, नीच हूं, कपटी हूं। ये अब आपको नहीं कहना है। पापी नीच कपटी आप नहीं हैं, भगवान के बच्चे हैं। शेर का बच्चा क्या होगा और भगवान के बच्चे पापी होंगे या पुण्य आत्मा? पुण्य आत्माएं। तो मैं सबसे पहले आपको एक बहुत सुंदर बात याद दिलाऊंगा। चित्र आ जाए जरा, तब तक आप सभी ने यहां क्लासेस में सुन लिया है, भगवान के हम बच्चे हैं, परमात्मा हमारा परम पिता है, वो हमारा पिता है। तो आप सभी गहराई से चिंतन करें, हम भगवान के बच्चे हैं, वो हमारा परम पिता है। है सभी का परम पिता? जो कहते हैं जरा हाथ उठाओ। हम सबका परम पिता, अब अपने से बात करो, वो मेरा परम पिता है। आंख बंद करके बात करो, नहीं अपने से मन ही मन में बात करो, वो मेरा परम पिता है, अर्थात वो मेरा है। जो भगवान है वो मेरा है, बस स्वीकार करो आप इस सत्य को। भगवान कहने से बहुत दूरी हो गई हमारे उसके बीच में, पर वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, हम उसके परिवार हैं। आज से आप सभी भाई बहने भगवान को अपने परिवार का हेड बना दो, मालिक। तो जो हेड होता है, देखो अब तक आप हेड हैं अपने परिवार के, तो सारी चिंताएं, सारा हेडक आपको होता है। अगर आप भगवान को हेड बना देंगे तो सारी चिंताएं वो ले लेगा, आपका जीवन आनंदकारी, निश्चिंत, सुखों से भरपूर हो जाएगा। बनाएंगी माताएं परमपिता को अपने परिवार का हेड, बनाएंगे? मैं बड़ी हूं, मैं मालिक हूं, मैं इन बच्चों की मां हूं, इसे जरा छोड़ दो। शिव बाबा मेरा परमपिता, वो मालिक है, हमारे परिवार में सबसे बड़ा वो है। इसलिए आज से अपने अपने परिवार में एक को और जोड़ देना। अगर कोई पूछे आपसे आपके परिवार में कितने लोग हैं, 5 हैं, तो अब कितने हो गए? 6 हो गए। बहुत सुख मिलेगा आपको इससे, आप उससे जुड़ जाएं। पहली बात, ये योग का पहला कदम है, हम अपने परमपिता से जुड़ जाएं, इससे हम उसके बहुत समीप आ जाएंगे और आप अनुभव करेंगे। आपका अपने परमपिता से मिलन होना सहज हो जाएगा। मैं एक बहुत बड़ा प्रश्न आपसे पूछता हूं, आप में से कौन कौन अपने परमपिता से मिलना चाहेंगे? सोच के उठाना, कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। सब चाहेंगे अपने परमपिता से मिलना, हम सबका अधिकार है। जैसे संसार में बाप और बच्चे बिछुड़ जाएं, दोनों को ही सुख नहीं मिलता, बाप के मन में भी बच्चों से मिलने की बहुत इच्छा होती है और बच्चों के मन में भी अपने बाप को देखने की बहुत इच्छा होती है। हमारे परमपिता को भी हमसे मिलने की उतनी ही इच्छा होती है जितनी हमें। हम केवल अपने कदमों को आगे बढ़ाएं, हम अपने को स्वच्छ करेंगे, क्योंकि अगर हम मैले रहेंगे तो परम पावन परमात्मा से नहीं मिल सकते। हमें अपने को शुद्ध करना है। तो आज का टॉपिक है, भाई आया चित, पेन ड्राइव में आया? नो, सीडी, सीडी नहीं है। शुरू करना मुझे, आप सभी एक चीज को अब और देखें। आपको थोड़ा बहुत यहां पता भी चला है, ये वो सत्य चीजें हैं जिनको हम भूल गए हैं। आप सभी जानते हैं, जब हम मंदिरों में जाते हैं, देवी देवताओं के चित्र देखते हैं, फोटो देखते हैं, उनकी मूर्तियों के दर्शन करते हैं, तो हमारे मन में क्या क्या होता है? अपने अंदर को झांक कर आप देखें, हमारे मन में उनके लिए प्यार होता है, हमारे मन में उनके लिए श्रद्धा होती है, हमारे मन में उनके लिए सम्मान होता है, ठीक है? क्यों? सोचना है क्यों? आप कहेंगे वो देवता हैं, भगवान हैं, इसलिए। केवल इसलिए नहीं, हम उनके वंशज हैं, हमारे पहले जन्म, देव कुल में हुए थे, आप सब जानते हैं। मनुष्य मरता है, आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में चली जाती है। पीछे को चलें जरा, इस शरीर से पहले हम किसी और शरीर में थे, उससे पहले किसी और शरीर में थे, उससे पहले किसी और शरीर में थे, सबसे पहले देव शरीर में थे। आप सभी जो यहाँ बैठे हैं, आए हैं, बहुत प्यार से यहाँ आए हैं, आपको मालूम होना चाहिए, याद रखना ये बात, आप देव कुल की महान आत्माएं हैं। कौन है? देव कुल की महान आत्माएं। आज हमारी सभा में 4000 देव कुल की महान आत्माएं बैठी हैं। कौन है आप सभी? बोलो जरा मुख से, कौन है? देव कुल की महान आत्माएं। तो देखो, जब तक चित्र आए, अभी वो चित्र नहीं आया है जो मुझे आपको दिखाना है। ये चक्र है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का। सतयुग में हम सभी देवी देवता थे, तब हमारे कर्म कैसे रहे होंगे? जब हम देवता थे, हमारे कर्म अकर्म दिव्य कर्म थे। सतयुग और त्रेता युग में, दो युगों में हम देव रूप में थे, ये हम सब की कहानी है। पाप का वहां नाम निशान नहीं था, मनोविकारों का नाम निशान नहीं था, दुख रोग शोक अशांति परेशानी टेंशन ये सब भी वहां नहीं थे। द्वापर युग के बाद और त्रेता युग के बाद जब द्वापर युग प्रारंभ हुआ, तब आत्मा में गिरावट प्रारंभ हुई, हम देवता से मनुष्य कहलाने लगे, देव सभ्यता लोप हो गई, मानव सभ्यता प्रारंभ हुई, और यहां से मनुष्य के अंदर प्रवेश किया 5 विकारों ने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इन 5 विकारों के कारण इस संसार में धीरे धीरे पाप कर्म हुआ, धीरे, ज्यादा नहीं। द्वापर युग बीता, थोड़े थोड़े पाप कर्म मनुष्य ने किए, कलयुग में आ गए, पाप बढ़ गया, 5 विकार बढ़ गए, दुख अशांति बढ़ गई, रोग शोक बढ़ गए। अब हम कहां हैं? कलयुग के अंत में, ये युग परिवर्तन का समय आ गया है, पाप बहुत बढ़ गया है, आज मनुष्य बहुत पाप कर रहा है। मैं आप सभी को कोशिश करूंगा रियलाइज कराने की, आप अपने अंदर झांक कर देखेंगे हम रोज क्या क्या पाप करते हैं। नॉर्मल रूप से यदि हम किसी से पूछते हैं, भाई तुम कुछ पाप तो नहीं करते, तो मनुष्य कहता है नहीं भाई, भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, हम पाप से बहुत डरते हैं, हम कोई पाप नहीं करते हैं। एक मनुष्य मेरे पास आया, अभी नजदीक की बात है, मैंने उससे यही पूछ लिया, उसके जीवन में थोड़े दुख थे, मैंने उससे पूछा कोई पाप तो नहीं होता? का हाथ जोड़ा, नहीं भाई, पाप से तो हम बहुत डरते हैं। मैंने उससे पूछा शाकाहारी हो या मांसाहारी, तो कहा कभी कभी खा लेते हैं। मैंने उससे पूछा कितने मुर्गे खाए हैं अब तक, हंसने लगा। तो मैंने कहा जब मुर्गों की गर्दन मरोड़ी थी किसी ने भी, क्या उस पाप का खाता आपके खाते में जमा नहीं हुआ? अब वो सोचने लगा, उसने कभी सोचा ही नहीं था कि मांसाहार भी पाप कर्म है, वो सोचता था हम तो कोई पाप नहीं करते। आज संसार में पाप बहुत बढ़ा हुआ है, ठीक है या नहीं? माताएं क्या समझती हैं, पाप बढ़ा हुआ है या पुण्य बढ़ा हुआ है? पाप बढ़ा हुआ है। अगर आप गहराई से विचार करेंगे, मनुष्य आंखों से भी पाप करता है, कानों से भी, मुख से भी, हाथों पैरों से भी। हम इन बातों को जरा गहराई से चर्चा करेंगे और हमारी चर्चाओं का आज लक्ष्य है कि आपके पास अगर छोटे से छोटा भी पाप कर्म हो उसे पुण्य में बदल दें, क्योंकि हम सभी देव कुल की आत्माएं हैं। आज से हमें ये कहना ही नहीं है मैं पापी हूं, मैं देव कुल की पुण्य आत्मा हूं। तो हमारे पुण्य बढ़ते जाएंगे, हमारा जीवन सुखी होता जाएगा। पाप और पुण्य, आप मेरे से बहुत दूर बैठे हैं, मैं आपसे पूछूंगा नहीं, पाप क्या है? मैं आपको उसकी परिभाषाएं देता हूं, ध्यान से सुनना। कर्म तो मनुष्य निरंतर करता है, पहली परिभाषा है। मैं तीन परिभाषा दे रहा हूं, बुद्धिमान भाई बहने बैठे हैं सभी डीपली बहुत गहराई से चिंतन करेंगे। आपको यहां मालूम हो गया मैं आत्मा हूं शरीर नहीं। जो मनुष्य देह भान में रहकर कर्म करता है वो कर्म पाप कर्म, और जब मनुष्य आत्मिक स्वरूप में रहकर मैं आत्मा हूं इस फीलिंग में रहकर कर्म करता है वो पुण्य कर्म होते हैं। दूसरी डेफिनेशन, कोई मनुष्य यदि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश होकर काम करता है वो पाप कर्म बनते हैं। जब मनुष्य इनसे मुक्त होकर कर्म करता है वो पुण्य कर्म कहलाते हैं। तीसरी परिभाषा, ये बहुत गुह्य है, जो कर्म हमारी आत्मिक शक्ति को नष्ट करते हैं वो पाप कर्म, जो कर्म हमारी आंतरिक शक्तियों में वृद्धि करते हैं वो पुण्य कर्म कहलाते हैं। अब आप सभी को जानना चाहिए, हम सभी के ऊपर अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोझा है। पुण्य भी हमारे साथ हैं और पाप कर्म भी हमारे साथ हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे, आपकी अनेक समस्याओं का हल मिलेगा। जिसके खाते में पाप कर्म बहुत बढ़े हुए हैं उनके जीवन में समस्याएं बहुत आती हैं, उनके जीवन में रोग बहुत आते हैं, उनके जीवन में अनहोनी घटनाएं बहुत होती हैं, उनके संबंधों में कड़वाहट रहती है। मैं बहुत सी बातें आपको सुना सकता हूं। अभी एक माता मेरे पास आई, कुछ ही दिन हुए, यहां बड़ा प्रोग्राम था। कहा हमारे घर में एक ही व्यक्ति है जिससे हम 15 लोग परेशान हैं। कहा हम 16 लोग एक साथ रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली है, 3 भाई हैं, सब इकट्ठे रहते हैं। सबसे छोटी जो हमारी देवरानी है, कहा उसके कारण हम सब दुखी हैं। सुने आप ध्यान से। कहा जब उसकी शादी होकर वो हमारे घर में आई, आते ही उसने अपने पति को कहा इन सबको मार दो तब मैं यहां रहूंगी, नहीं तो नहीं रहूंगी। कहा हम सब उसकी बात सुन के आश्चर्यचकित हो गए कि क्या बोलती है। कहा उसके कारण सारा परिवार परेशान रहता है, उसके कारण रहता है, और वो क्या कहती है, तुम सब मुझे परेशान करते हो। तो मैंने उसको बताया। वो मेरे से पूछने आई थी हम क्या करें जो हमारे घर में शांति हो जाए। मैंने उसे बताई कुछ विधि। इसका कारण है, अब चिंतन करें आप, इसका कारण है कि आप सबने मिलकर पूर्व जन्म में उसे बहुत सताया है, वो बदला लेने आई है। इसलिए जैसे ही उसने आपको देखा उसने कहा इन सबको मार दो तब मैं यहां रहूंगी। ऐसे कड़वे शब्द कोई बोल नहीं सकता संसार में। ठीक होने लगी बात। मैंने उन्हें सिखाया इस आत्मा से कैसे क्षमा याचना करो, आपने इसको कष्ट दिया है। अभी की घटना, आज का ये एक सुंदर समाचार आपको सुनाऊं। मुझे फोन आया, ये मध्य प्रदेश में बालाघाट एक जगह है, वहां एक छोटी आयु की माता ने मुझे फोन किया था अब से 20-25 दिन पहले और कहा मेरे को दो लड़के हैं, छोटे ही हैं अभी। एक जो छोटा है, छोटा माना 2-4 साल का, जन्म से ही बीमार है, पैरों में पोलियो है, बुद्धि बहुत कम है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि जिंदा है लेकिन जैसे जिंदा नहीं है। क्या करें उसके लिए? मैंने उससे पूछा कितने समय से ज्ञान योग का अभ्यास करती हो? कहा 2 साल से। मैंने पूछा तुम्हारा योग शिव बाबा से अच्छा होता है? कहा नहीं, मुझे बहुत चिंता है क्या करूं। देखो मैंने उससे पूछा था कि तुम इस बच्चे की मुक्ति चाहती हो या इसको जिंदा देखना चाहती हो। मैं सोचा ये कहेगी कि ये बेचारी आत्मा चली जाए शरीर छोड़ के, ये भी सुखी हो जाए। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं मां हूं ना इसकी, मैं चाहती हूं ये जिंदा रहे, ये सुखी रहे, लड़का है तो मैं क्या करूं। तो देखिए उसकी ये स्थिति क्यों थी, मैंने उसको थोड़ी विधि बताई थी और आज उसका फोन आया 21 दिन करने के बाद। उसने कहा मैं आपको एक खुशी का न्यूज देने के लिए फोन किया है केवल एक मिनट के लिए, कि वो मेरा लड़का याद दिलाया उसने मुझे ये समस्या थी, आपने ये बताया था, वो मेरा लड़का पूरा ठीक हो गया है। मुझे भी बहुत खुशी हुई, डॉक्टर्स उसमें कुछ नहीं कर पाते थे। ये कर्मों की गति है। हम सबके साथ 2500 साल के द्वापुर से कलयुग, दो युगों के बहुत पाप कर्म हमारे साथ चलते आ रहे हैं, साथ वो हमारा पीछा कर रहे हैं। कर्म के फल से कोई भी मनुष्य बच नहीं पाता, परछाई की तरह वो हमारे साथ चलते हैं। आपने किसी का 1 रुपया ले लिया और दिया नहीं, हमने सोचा 1 ही तो रुपया है, लेकिन आपको ब्याज सहित लौटाना पड़ेगा, कोई नहीं बच सकता। संसार में बहुत लोग आजकल पैसे के लिए पाप कर रहे हैं, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। राजनीति में बड़े बड़े अधिकारी लोग इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कि अगर उनसे पूछा जाए तुम इस पैसे को खाओगे या बिस्तर बना के इस पे सोओगे, करोगे क्या? लेकिन पाप बहुत हो रहा है। इस बच्चे की भी इस मनोस्थिति का कारण, शारीरिक स्थिति का कारण, उसके जन्म जन्म के पाप कर्म थे। एक दूसरा सुंदर समाचार सुनाऊं, आज ही मिला मुझे ये 2 सुंदर समाचार सवेरे से अब तक मिले। एक भाई, उसकी 2 लड़कियां, जवान लड़कियां, किसी बात से नाराज होकर घर छोड़ के चली गई चुपचाप, और इस बात को हो गए थे 15 दिन, अब से 15 दिन पहले। जब उसके 8-9 दिन हो गए तो मुझे उसने फोन कराया। जिससे कराया मैंने उसे कहा कि भाई उसको कहो ना मेरे से बात करे, मैं देखूं क्या है। कहा उसकी मनोस्थिति इतनी बिगड़ गई है कि वो फोन नहीं उठा सकता, इतना बुरा हाल हो गया था। 9 दिन हुए थे, लड़कियां चली गई थी, कहां गई खोजते खोजते थक गए थे। तो मैंने खुद उसका नंबर लिया और उसको फोन किया। मैंने उसको हिम्मत दिलाई, जगाया, सो गया था ना, जागृत किया। पहले कहा कि वो आ जाएंगी दो तीन दिन में, चिंता ना करो। कुछ अभ्यास सिखाए उसको और उसने वो अभ्यास किए, तीन दिन किए बस। कल वो लड़कियां घर आ गई, आज मेरे से उनकी फोन पे बात कराई। मैंने उन्हें समझाया भी कि तुमको ऐसे नहीं जाना चाहिए था। कहा हम तो ऐसे ही चले गए थे, पापा को लेसन सिखाना था। मैंने कहा तुम्हें पता तुम्हारे पापा को क्या क्या हो गया 10-12 दिन में? तो आप सभी पहचान लें, मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं, आप सभी के पास हर समस्या को हल करने की शक्ति है। अगर समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी आपके पास है। समस्याओं को क्रिएट भी मनुष्य ने किया है और समस्याओं का समाधान भी मनुष्य के पास ही है। आप अब अपनी शक्तियों को बढ़ाएंगे, अपने कर्मों को शुद्ध करेंगे, अपने को पुण्य आत्मा बनाएंगे तो पाप का फोर्स समाप्त हो जाएगा, पुण्य का फोर्स बढ़ जाएगा, आपका जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। मैं आजकल देख रहा हूं संसार में, पिछले 5 साल से मनुष्य को मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। आप सभी इसके लिए तैयार रहें कि अपने मन को खुशियों से भरपूर रखना है, छोटी-छोटी बातों में सेंसिटिव नहीं होना है, छोटी-छोटी बातें इधर नहीं जाने देनी है, हल्का करो अपने को। माताओं को मैं विशेष कहना चाहूंगा, कन्याएं बैठी हों उनको कहूंगा, अपने मन की स्थिति को इतना कमजोर नहीं बनाना है कि कोई भी व्यक्ति हमारी खुशी छीन कर चला जाए। थोड़ा पावरफुल बनो, आज से याद रखना और रोज सवेरे याद करना। जैसे मैंने आपको कहा, शेर का बच्चा, सर्वशक्तिवान भगवान के हम बच्चे हैं, हम शक्तिशाली हैं। याद करो सभी, हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं, हम शक्तिशाली हैं, समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हैं, बातों से अधिक शक्तिशाली हैं, जो परिवारों में हो रहा है उससे हम अधिक शक्तिशाली हैं। अपने को ऊपर निकालो, हर चीज का इफेक्ट जीवन पर आ जाए उससे आप बच सकते हैं। राजयोग के अभ्यास से आप अपने को इतना पावरफुल बना लेंगे कि जीवन में आने वाली छोटी मोटी बातें आपको खेल लगेंगी। पाप कर्म, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वश जो भी कर्म मनुष्य करता है वो पाप कर्म है। आप देख लें, क्रोध वश कोई आपसे झगड़ा करे, क्रोध वश अहंकार वश कोई आपको बुरे वचन बोले, आपकी खुशी छीन कर ले जाए, आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर दे, ये पाप होगा ना। क्रोध करना भी पाप है, क्योंकि क्रोध से हमारी शक्तियां बहुत नष्ट होती हैं। इसलिए अपने क्रोध को डाउन करना है। क्रोध को समाप्त करने के लिए जिसको भी बहुत क्रोध आता हो आप सीख लें और सिखाएंगे, सवेरे उठकर 7 बार विचार करना मन में, मैं आत्मा शांत हूं। 7 बार संकल्प करना, मैं तो शांत हूं, मैं आत्मा तो शांत हूं, तो शांति बढ़ जाएगी, क्रोध घट जाएगा। 21 दिन अगर आप करेंगे तो बिल्कुल संभव है कि 21 दिन में आप क्रोध से मुक्त हो जाएं। लोभवश पाप होता है, मैंने आपको थोड़े में बताया। कर्म की गति ऐसी है कि हम किसी से कुछ ले लें, हम गलत तरीकों से धन कमा लें, हम सुखी नहीं हो सकते। आपके बच्चे चरित्रवान नहीं हो सकते अगर गलत पैसों से आप उनकी पालना कर रहे हैं। ध्यान से सुन लें, आप करना न करना आपके ऊपर है। आज धन का लोभ इतना बढ़ गया है कि मनुष्य सोचता है जितना पैसा उसके पास है वो कम है। संतोष पूरी तरह समाप्त हो चुका है। धन का लोभ मनुष्य से पाप करा रहा है। मैं आपको एक छोटी सी सुंदर कहानी बताना चाहता हूं। आप बुद्धिमान भाई विशेष रूप से बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, आपने ये कहानी सुनी होगी। सेठ जी ने अपने मुनीम से पूछा, हमारे खजाने में कितनी संपत्ति है? मुनीम ने कहा, इतनी संपत्ति है कि 7 पीढ़ी आराम से सुखी से रह सकती हैं, खा पी सकती हैं। ये सुनते ही सेठ जी उदास हो गए। मुनीम ने पूछा, सेठ जी इतनी अच्छी बात सुनाई फिर भी आप खुश नजर नहीं है, क्या हुआ? कहा, 7 पीढ़ी तो खा लेंगी पर 8वीं का क्या होगा? सुने आप अब ध्यान से, मैंने भी ये कहानी सुनी, मैंने सोचा सेठ जी ऐसा समझते थे कि कमाने की बुद्धि तो केवल मेरे पास है, बाकी मेरी सारी पीढ़ियां नालायक होंगी, वो कमाना नहीं जानेंगी, उनके लिए मुझे कमा के जाना है। अब मैं सभी भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को धन देना ज्यादा कल्याणकारी समझेंगे या उनको ऐसा योग्य बनाना कि वो धन स्वयं कमाए? ठीक है ना? उत्तर आपका मैं जानता हूं। धन आपने उन्हें दे दिया और वो चरित्रवान न हुए तो हो सकता है 1-2 साल में आपके धन को समाप्त कर दें, आप भी परेशान हो। आप उन्हें ऐसा योग्य बना दें कि वो कहें, हमें आपका पैसे की जरूरत नहीं, आप मौज करो, हम अपना खुद कमा लेंगे। ये है मनुष्य की बुद्धिमानी। आप अपने बच्चों को चरित्रवान बनाएं, उन्हें महानता सिखाएं, उन्हें गुण दें, वो आपके काम आएंगे। पुण्य कर्म हमें बढ़ाने हैं। मैं एक बात और इससे पहले आपके सामने रख दूं, क्रोधवश मुख से कटु वचन बोलना बहुत बड़ा पाप है। दूसरे का सुख छीन लेना बहुत बड़ा पाप है। दूसरे को परेशान कर देना, दूसरे को डिस्टर्ब कर देना बहुत बड़ा पाप है। आप याद रखेंगे कर्मों का सिद्धांत, जो कुछ हम दूसरों को दे रहे हैं वो डबल होकर हमारे पास आ रहा है। हमने दूसरों को सुख दिया, डबल सुख साथ साथ हमें प्राप्त हो जाएगा। हमने खुशी बांटी, डबल होकर हमारे पास आ जाएगी। हमने किसी को दुख दिया, हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। आप जानते हैं, हम किसी को मुख से कटु वचन बोलें 2-4 सुनने पड़ते हैं ना, दूसरा व्यक्ति सुनाता है। इसलिए मुख के द्वारा सभी को श्रेष्ठ वचन बोलकर पुण्य कर्म जमा करने हैं। आपके पास पैसा नहीं है, कोई गरीब है, नो प्रॉब्लम, पुण्यों के लिए पैसे की जरूरत नहीं। दूसरों को सुख देना, दूसरों को दुआएं देना, ब्लेसिंग्स देना, अच्छी फीलिंग्स देना, मदद करना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। आप दान न करो, आपके पास पैसा नहीं है, आप चारों धाम की यात्रा पर न जाओ, लेकिन अपने विचारों को शुद्ध करें, तो ये बहुत बड़ा पुण्य होगा। माताओं को पसंद है, घरों में हमारे वचन कैसे हों याद रखना, यहां से ये गिफ्ट ले जाना सभी, हमारे वचन दूसरों को सुख देने वाले हों। हम देव कुल की पुण्य आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। सोचो मंदिर की देवी आपको कटु वचन बोल दे, कैसा लगेगा? आप दुख लेकर देवी के मंदिर में जाएं, हे देवी मैं बहुत दुखी हूं, मुझे सुख दो, सुख का रास्ता बताओ, और देवी कह दे तुमने बहुत पाप किए, दुखी रहोगी, तो कैसा लगेगा? हम क्या चाहते हैं? दूसरे लोग हमसे प्यार से बात करें, दूसरे लोग हमें सम्मान दें, दूसरे लोग अच्छे वचन बोलें, तो जो कामना हम दूसरों से करते हैं वही हम भी करें। सिद्धांत बना लें आप जीवन का, अगर हम अच्छी बात सुनना चाहते हैं तो दूसरे भी तो सुनना चाहते होंगे। अगर हम चाहते हैं हमारी कोई ग्लानी न करे तो दूसरे भी तो यही चाहते होंगे। हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं। सभी भाई बहनों को एक बहुत सुंदर बात मैं कहना चाहता हूं, जिस घर में खुशी और प्रेम है वहां कुछ भी प्राप्त करना कठिन नहीं है, वहां लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में लड़ाई झगड़ा, घृणा नफरत, बदले की भावना, क्रोध की अग्नि जलती हो, वहां से लक्ष्मी विदाई ले जाती है। आपको अपने घर में, पहले मैं माताओं को कहूंगा, प्रेम की खुशी की गंगा बहानी है, पहले माताओं का ये काम है। आप बहुत अच्छी तरह जान लें, अगर आप भोजन बनाते हुए परेशान हैं, अगर आप भोजन बनाते हुए क्रोध में हैं, अगर आप भोजन बनाते हुए कुछ व्यर्थ चिंतन कर रहे हैं, तो आपके भोजन में क्या नहीं होगा? सोच लो, भोजन आपके विचारों को ग्रहण कर लेगा, जो व्यक्ति उसको खाएगा उसका चित्त अशांत होगा। इसलिए माताओं पे बहुत जिम्मेदारी है अपने घर को मंदिर बनाना। आप एक भोजन पे ही ध्यान दो, भोजन में प्यार भर दो, भोजन में शिव बाबा की याद भर दो, भोजन बहुत अच्छे माहौल में बनाओ, आपके घर में सुख शांति रहेगी। वो लड़ाई भी कर रहे हैं और भोजन बना रहे हैं, क्रोध भी कर रहे हैं और दूध उबाल रहे हैं, दूसरे का चिंतन कर रहे हैं, फलानी ने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, उसे दिखाऊंगी, तो भोजन में अशांति भर गई, दूध चाय पानी में अशांति भर गई। अटेंशन, घर घर का कल्याण करना माताओं के हाथ में है। अपने घर के माहौल में खुशी प्रेम भरना है। सभी भाई और बहनें एक चीज आज से सीख लेंगे, एक दूसरे को एप्रिशिएट करना है घरों में। सीख लो आज से आप घर में एक दूसरे की प्रशंसा करो। माताओं ने भोजन बनाया हो भले ही बहुत अच्छा न हो, पर ये जरूर कह दो, वाह कितना अच्छा बनाया, बड़ा टेस्टी है, आनंद आ गया, तो माता जी की थकान उतर जाएगी। और आपने भोजन खा के कह दिया क्या बनाया, नमक भी ठीक नहीं डाला, तो उसकी थकान बढ़ जाएगी, आपके घर में वातावरण भारी हो जाएगा। बच्चों को एप्रिशिएट करो, एक दूसरे के कार्यों की प्रशंसा करो, आपके घर में खुशी का माहौल रहेगा। पसंद है? माताओं ने समझ लिया ना, इंग्लिश का शब्द है एप्रिशिएट करना, माना प्रशंसा करना। बच्चों पे दबाव नहीं, बच्चे ठीक से पढ़ नहीं रहे, दबाव बना दिया है। दबाव से मनुष्य की बुद्धि का विकास कभी नहीं होता। दबाव नहीं, उन्हें उमंग दिलाओ, तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत होशियार हो। अगर आप बार बार कहते हैं तुम तो बुद्धू हो, तुम तो कोई काम का नहीं, हमारे घर में ऐसे ही पैदा हो गया है, माताएं बोलती है ना गुस्से में, तुम तो होते ही मर जाता तो अच्छा होता, तो बच्चों की बुद्धि डल होने लगती है। एक माता मुझे अपने घर में ले गई, उसका छोटा बच्चा था, 7 साल का होगा, तो कहने लगी मेरे इस बिच्छू को भी ठीक करके जाओ। मैंने कहा बिच्छू? कहा मेरा ये लड़का, मैंने इसका नाम बिच्छू रखा हुआ है। मैंने कहा क्यों? काटता रहता है मुझे। मैंने भी हंसी की, आप इसकी मां हो, काटना तो तुमने ही सिखाया होगा ना। एक माता ने कहा मेरा लड़का बहुत शैतान है, उसे ठीक करो। मैंने उसको कहा बुलाना अपने बच्चे को, मैं देखूं। वो बाहर खेल रहा था, उसने आवाज दी ए शैतान इधर आओ। शैतान भाग के घर में आ गया। मैंने कहा इसका नाम शैतान ही है क्या? कि नहीं, नाम तो दूसरा है, मैंने शैतान रखा हुआ है। मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये बात? जिसने अपने लड़के का नाम बिच्छू रखा, जिसने अपने लड़के को रोज 10 बार शैतान कहा, वो शैतान बनते जाएंगे। मैंने उस मां को कहा आज से इसको देवता कहा करो, ये देवता बन जाएगा। सचमुच उसने उसका नाम बदला, तुम देवता हो, और आज वो बच्चा बहुत योग्य हो गया है। माताएं अटेंशन देंगे, अपने बच्चों को जो कुछ आप बार बार बोलती हैं उसका प्रभाव बच्चों पर बहुत पड़ता है। तो सभी इस बात को स्वीकार करेंगे, हमें अपने अपने घर में खुशी और प्रेम की गंगा बहानी है। भाइयों का क्या विचार है? पसंद है या क्रोध की गंगा बहानी है? क्रोध की नहीं बहानी है ना, क्रोध अनेक समस्याओं को जन्म देता है। क्रोध की गंगा नहीं, प्रेम और खुशी की गंगा। आपके घर में धन संपत्ति भी सहज आएगी, सुख शांति रहेगी, समस्याएं आएंगी तो सहज चली जाएंगी। और आगे चले, अब थोड़ी कुछ गुह्य बात, थोड़ी बड़ी बात आपको सुना देता हूं, आप में से जो भी उसे ग्रहण कर लें तो बहुत अच्छा होगा। कई बार मनुष्य पुण्य कर्म करता है, लेकिन वो पुण्य कर्म करने के साथ अपना नाम चाहता है, महिमा चाहता है, वो चाहता है मैं एक सुंदर मंदिर बनवा दूं पर उस पे नाम मेरा लिखा हो, भले ही मंदिर लक्ष्मी नारायण का हो पर नाम हो बिरला मंदिर, मेरा नाम लिखा हो। स्कूल बनवा दें उस पर मेरा ही नाम लिखा हो। याद रखेंगे आप, कोई भी पुण्य कर्म यदि निष्काम भाव से नहीं किया जाता तो आधा पुण्य क्षीण हो जाता है। आजकल बहुत लोग कॉलेज खोल रहे हैं, हॉस्पिटल खोल रहे हैं, लेकिन उनका लक्ष्य पुण्य करना नहीं, क्या है? धन कमाना। आप बहुत अच्छी तरह जान लें, मनुष्य को समय पर साथ देंगे उसके पुण्य कर्म। आपकी तरफ के ही, पंजाब की तरफ के एक बहुत बड़े व्यक्ति की सच्ची कहानी सुना देता हूं, सच्ची। उसको एक ही लड़का, वो बहुत धनवान, लेकिन धन के साथ उसे अहंकार भी बहुत था। वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो मैं बोल रहा हूं वो था। उसको एक ही लड़का था, उसको कैंसर हो गया। उसने उसको संसार के अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, कैंसर बढ़ता गया। आखिर मुंबई में एक डॉक्टर के पास पहुंच गया वो सब रिपोर्ट लेकर। डॉक्टर ने सब रिपोर्ट देखी और हाथ जोड़ दिए, केस बाहर निकल गया है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप हैरान होंगे, वो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति डॉक्टर के आगे उसके पैरों में बैठ गया, पैर पकड़ लिए, मेरे बच्चे को बचा लो, चाहे मेरी सारी संपत्ति ले लो। डॉक्टर ने उसे कहा कि अब आप इस बच्चे को या तो ऊपर वाला बचा सकता है या तुम्हारे पुण्य कर्म। लेकिन उसके पास पुण्य कर्मों का स्टॉक नहीं था, केवल धन का स्टॉक था। बच्चे की मृत्यु हो गई, तब उसे पता चला कि धन की दौलत से भी बहुत बड़ी पुण्य कर्मों की दौलत है, जो समय पर मनुष्य को काम आती है। हम ऐसी ऐसी घटनाएं सुनते हैं, एक्सीडेंट हुआ दो कारों का, दरवाजा खुला, एक व्यक्ति उछल के दूर गिरा, बाकी चार बैठे थे, मृत्यु हो गई, वो जिंदा रहा, थोड़ी सी चोट लगी। ये सब कर्मों की कहानी है। किसी को बहुत बड़ी बीमारी हुई, सहज पार हो गई, ये कर्मों की कहानी है। किसी को छोटा सा कांटा चुभा और पैर काटना पड़ा, ये कर्म कहानी है। इसलिए आज हम इस क्लास के माध्यम से आप सभी को कहना चाहेंगे, पुण्यों का खाता बहुत बढ़ाएंगे। आपके बच्चे भी आपको सुख देंगे, आपको संबंधों में भी बहुत सुख मिलेगा, आप अपने कार्यों को एंजॉय करेंगे। पसंद है? सभी पुण्यों का खाता बढ़ाएंगे, हाथ उठा दो जरा, देख लो हाथ ऊपर को उठाया तो ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है। सब पुण्य कर्म, न छोटे छोटे पाप करेंगे, बोल के द्वारा दूसरों को दुख दे देना, दूसरों की संपत्ति पर अधिकार कर लेना। मैं एक छोटी सी बात और सुना दूं आप सबको, आप सब इससे बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। घर घर में भाइयों के बीच बंटवारे पर बहुत संघर्ष होने लगता है, सब जानते हैं आप इसे। जहां हमारा लौकिक स्थान है, आपके पास ही है, हरियाणा के पास, तीन भाइयों में लड़ाई हुई, दीवार एक फुट उधर बननी थी, वो कहता था नहीं ये जगह मेरी है, एक फुट इधर बनाई जाए। झगड़ा हुआ, गोली चली, तीनों मर गए। बोलो वो घर किसके काम आएगा? पिछले साल की घटना है। संपत्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, संबंधों में प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। माताएं सभी अपने चित्त में समा लो, संपत्ति दूसरे की संपत्ति से कभी कोई सुखी नहीं हो सकता। अपने दिल से कमाया गया धन ही मनुष्य के लिए कल्याणकारी होता है, ठीक बात है ना। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे, दूसरे भाई की ज्यादा संपत्ति ले ली, बहुत केसेज हैं, छोटा भाई बहुत भोला, बड़े ने थोड़ा सा हिस्सा उसे दिया, ज्यादा ले लिया, वो बहुत भोला, उसकी पत्नी भी बहुत समझदार, उसने संतोष किया कि हमारे साथ शिव बाबा है, कोई बात नहीं, और 3 साल के बाद ही जिस बड़े भाई ने बहुत संपत्ति ली थी वो गरीब हो गया और ये भोला व्यक्ति ऊपर उठ गया। संपत्ति कभी सदा मनुष्य के साथ नहीं रहती। सुख शांति की संपत्ति, खुशी और प्रेम की संपत्ति, संबंधों में अपनापन संपत्ति, ये बहुत अनमोल खजाने हैं मनुष्य के, हैं या नहीं? 50 करोड़ की संपत्ति किसी के पास है लेकिन रात को नींद नहीं आती। 1000 करोड़ की संपत्ति है और डॉक्टर ने कह दिया है भोजन हजम नहीं होता, केवल बॉयल सब्जी खानी है, घी नहीं खा सकते हो, मिठाई नहीं खा सकते हो, बोलो उसकी संपत्ति का उसके लिए महत्व होता है? असली संपत्ति हमारा जीवन है, असली संपत्ति हमारा परिवार है, असली संपत्ति हमारी बुद्धि है, हमारा चरित्र है, उस पर हम सभी बहुत ध्यान देंगे। अब मैं आपको ले चलता हूं कुछ बहुत सुंदर बातों की ओर, जो आप कल से ही अपने जीवन में प्रारंभ कर देंगे। हम जो कुछ सोचते हैं बहुत ध्यान से सुन लेंगे सभी, आपको बहुत काम आएंगी ये बातें। जो कुछ हम सोचते हैं हमारे हर संकल्प में, पहले मैं इंग्लिश का शब्द बोलूंगा फिर हिंदी, हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, निर्माण करने की शक्ति है। जो संकल्प हम बार बार करते हैं उसका हम निर्माण करते हैं। संकल्प बहुत बड़ा खजाना है। अगर हम व्यर्थ सोचते हैं तो ये भी हमारे पाप कर्मों में जुट जाता है। आप वही सोचेंगे जो आप चाहते हैं, आप वो नहीं सोचेंगे जो नहीं चाहते। मैं बहुत सहज भाव से आपके सामने संसार का ये बहुत बड़ा रहस्य रख रहा हूं, ध्यान से सुने माताएं। फिर से, जो संकल्प हम बार बार करते हैं उसका हम निर्माण करते हैं। आप देख रहे हैं आपके आसपास 10 लोगों को कैंसर हो गया, आप भी सोचने लगे कहीं मुझे न हो जाए, कहीं मुझे न हो जाए, मुझे कैंसर न हो जाए, तो आप कैंसर का आह्वान कर रहे हैं। संकल्प करो मुझे होगा ही नहीं, क्लियर है ना? देखो कुछ लोग सोचने की क्या गलती करते हैं, वो देखते हैं कि आजकल बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को निकाल देते हैं, सेवा नहीं करते, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, तो कई सोचते हैं अरे भाई अपने पास धन इकट्ठा रखो, कभी बुरा समय आ जाए, बच्चे घर से निकाल दें तो काम आएगा। तो जो लोग ये संकल्प कर रहे हैं वो धन तो इकट्ठा कर रहे हैं ठीक है, पर घर से निकलने की भी तैयारी कर रहे हैं, समझ गए ना भाई लोग? वो ये भी तैयारी कर रहे हैं कि बुरा दिन आएंगे। अपने सोचने के तरीके को ठीक करके जाना यहां से। हर मनुष्य कहीं ना कहीं गलत सोचता है। हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डॉक्टर ने कह दिया अब तो गोली खाती रहना है जीवन भर, और हमने मान लिया अब ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होगा। जिससे भी हम मिलते हैं उसे कहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, तो वो कभी ठीक नहीं होगा। आपको शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई, आप बार बार सोचते हैं मैं तो डायबिटिक हूं, अब तो शुगर जाएगी नहीं, अब तो ये मरने पर ही जाएगी, तो आप उसको कह रहे हैं यहीं रहो अब जाना नहीं। अगर आप संकल्प कर दो जाएगी, हम ठीक होंगे, जो आई है वो जाएगी, तो शुगर जाएगी। संकल्पों की शक्ति के महत्व को सभी पहचाने। इसलिए फिर रिपीट कर रहा हूं, आज आपका जीवन जैसा भी है वो आपके पास्ट के चिंतन का परिणाम है। और जो चिंतन आज आप कर रहे हैं वैसा ही आपका भविष्य होगा। इसलिए वो नहीं सोचना है जो हम नहीं चाहते। बस में बैठे हैं, बैठते ही संकल्प करने लगे ये ड्राइवर बहुत तेज गाड़ी चलाता, कहीं एक्सीडेंट न कर दे, कहीं एक्सीडेंट न कर दे, तो आप एक्सीडेंट को बुला रहे हैं। सभी सोच लें अच्छी तरह, मेरे बच्चे कहीं बड़े होकर बिगड़ न जाएं, लड़कियां कॉलेज में पढ़ने जाती हैं कहीं बिगड़ न जाएं, कहीं बिगड़ न जाएं, तो आप उन्हें बिगाड़ने का संदेश दे रही हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? आप वही सोचेंगे जो आप चाहते हैं। बच्चों के लिए सदा सोचना मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये बहुत गुणवान बनेंगे, ये बहुत चरित्रवान होंगे, ये हमारे कुल का नाम रोशन करेंगे। पसंद है माताओं को? यही सोचना। उल्टा सोचने से सब कुछ उल्टा ही होगा। सवेरे जब आंख खोलो आप, अब रोज क्या करना है आपको, सवेरे आंख खोलो तो पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना, वो आपका पिता है ना, उसका आशीर्वाद ले लेना, गुड मॉर्निंग करना, मिलन करना। आप सीख लें ये विधि, अपने परम पिता से रोज आंख खुलते ही मिलना है। आंख खुलते ही और कुछ नहीं सोचना, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा की संतान हूं। अब क्या सोचना, ध्यान से सुन लो, मैं बहुत भाग्यवान हूं। तीन बार कहना मन में, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत धनवान हूं, आज का मेरा दिन बहुत सुंदर बीतेगा, आज मुझे कदम कदम पर सुख मिलेगा, आज मुझे कदम कदम पर सफलता मिलेगी, मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त रहेगा, मेरा मन तनाव से मुक्त रहेगा, मैं अपने जीवन का आनंद लूंगी, एंजॉय करूंगा मैं आज के अपने जीवन को। सुंदर विचार करना। उठते ही नहीं सोचना अरे मेरा भाग्य तो बड़ा खराब है। अगर आपने उठते ही ये सोच लिया तो समझो आपने अपने भाग्य को सुला दिया। जो संकल्प आप सवेरे उठकर पहले 10 मिनट में करेंगे वो आपके जीवन का निर्माण करेंगे। मैं बहुत सुखी हूं, हमारे संबंधों में बहुत प्यार है, ये संकल्प करना। ठीक है, उठते नहीं सोचना मैं तो बहुत दुखी हूं, इसने तो मुझे तंग कर दिया, इससे पता नहीं कब जान बचेगी, ये तो मरती भी नहीं, हमारे घर में पता नहीं कहां से आ गई, ये नहीं तो आप अपने दुखों को बढ़ा देंगे। सबका कल्याण हो, हमारे घर में सब अच्छे हैं, सब तो भगवान के बच्चे हैं, हम बहुत सुखी हैं, हमारा भाग्य बहुत सुंदर है, हमें भगवान ने बहुत धन दिया है, ऐसे सोचना, बोलना भी यही, तो ये सब बढ़ता जाएगा। ये कर्मों की दुह्य गति है और आज से आप सभी हो गए पुण्य आत्माएं, भगवान के बच्चे, देव कुल की महान आत्माएं। अपने परम पिता से मिलना आपका अधिकार है, अब आप उससे मिलने के समीप पहुंच गए हैं और बहुत जल्दी आपका अपने परम पिता से मिलन होगा। मेरी शुभ भावनाएं हैं आप महान बनकर जाएं, बदल कर जाएं। जब आप अपने घर में जाएं तो बच्चे कहें मम्मी का चेहरा पहले जैसा तो नहीं रहा, बदल के आई हैं। निश्चित आप बदल जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। अब हम 3 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और आप फील करेंगे ऊपर से शिव बाबा की किरणें हम पर पड़ रही हैं, ऊपर से जैसे उसकी शक्तियों की बरसात हो रही है।
कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ, धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े तो वहाँ पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना।